ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने गीत सुना, निराकार शिव बाबा ने इस धरती पर आकर हम सभी आत्माओं का तकरीर को कैसे बदले। हम सभी हर एक आत्मा अपने आप से पूछे या एकांत में बैठ के हम सोचे, बाबा ने हमको ढूंढा या हम लोग बाबा को ढूंढे। परंधाम कितना दूर है, उतना दूर से परमात्मा ने इस धरती पर आकर के हम दुनिया में किस किस कोने में थे, कहां थे, कैसे थे, हमारे संस्कार क्या था, हमारा जीवन कैसे था, वो सब कुछ देखते हुए भी बाबा ने हम सब बच्चों को अपनाया। अब जो है जैसा है, आप मेरा बच्चा है। स्वयं परमात्मा शिव ने ये बात अगर हम लोग एकांत में बैठ के हम अपने आप से बातें करें या सोचे, दुनिया में कितने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों ने कितने सालों सालों तक तपस्या किया है, घर बार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, उनको भगवान नहीं मिला है। परंतु हम जहां थे, हम हमारे घर स्वयं परमात्मा खुद आकर के हमको ढूंढ के निकाला है। ये निश्चय है ना हम सभी को, माताओं को? और वो नशा भी है, जितना निश्चय हमको होंगे उतना ही नशा चढ़ेगा। उस नशे से ही हम लोग हम अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को एक टाइटल भी दिया हुआ है। जो बाबा का बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वही क्या बनेगा? परिष्ठा बनेगा। ब्राह्मण सो परिष्ठा, परिष्ठा सो गारंटी है ना? ये तो ऐसे ही कहने की बात तो नहीं है ना? एक एक बात को अगर हमारे जीवन में हम लोग अनुभव करें, बैठ के अपने आप में सोचे, बाबा ने क्या से क्या बना दिया। आज भी मुरलीबे बाबा ने कहा, बच्चों के लिए मैं क्या हूं? बच्चों के लिए मैं सदा हाजिर नाजिर हूं। हम बच्चों के लिए, ऐसे तो सारी दुनिया बाबा का ही संतान है। सारी दुनिया में 700 करोड़ आत्मा है, ये 700 करोड़ आत्मा भी शिव का ही संतान है। फिर भी जो बाबा का डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, बाबा को इस संगम युग में पहचान लेता है, बाबा को अपना बना लेता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा ने जैसे हम जो थे जैसे थे अपना लिया, हम बच्चे भी बाबा जो कहा उस रीति से अपना तन मन धन सब कुछ बाबा के सामने सरेंडर करके, जो आत्मा अपने अंदर ट्रस्टीपन की जीवन बिताते हैं, उस आत्मा इस दुनिया में रहते हुए भी परिष्ठा जैसा उनका जीवन बन जाता है। क्यों उनके सामने कहां भी देखो कैसे भी देखो कौन रहेगा साथ में। बाबा ऐसे तो हम लोगों का जीवन में हम हर एक आत्मा ने अपने अपना अनुभव किया है। ऐसे तो मैं इस ज्ञान में आकर के 41 साल हुआ। मधुबन में सेवा करने का जो दादियों ने हमको मौका दिया 30 साल से मधुबन में सेवा करते हैं। जो सेवा बाबा ने हमको दिया है बगीचे का सेवा दिया है। जैसे मैं यहां आने के बाद में ज्ञान सरोवर का शुरू किया। जो आज बाबा ने कहा ना बच्चों के लिए मैं हाजिर नाजिर हूं उसका एक एक शब्द का बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया। जब बाबा पहले पहले आते थे उस समय सवेरे साढ़े शाम को 6:30 बजे बाबा आते थे। सवेरे कितना बजे जाते थे जो पुराने देखा होगा उनको अनुभव होगा। सवेरे 4:30 बजे अमृत वेले कभी 5 बजे। एक दिन ऐसा भी है बाबा शाम को 6:30 बजे आए सवेरे 10 बजे गए। इतना समय परमात्मा शिव ने हम बच्चों के सामने बैठ के सेवा किया है शुरू से। इसी जगह पर हम लोग बैठते थे छोटे छोटे परिवार होता था कभी 50 कभी 60 कभी 100 सब सामने सामने। हम 50 60 100 होते हुए भी बाबा पूरी रात हम बच्चों के साथ बातें करते थे पूरी रात। हम लोगों को तो उस दिन पूरा शिवरात्रि है। जब मैंने सबसे पहले 1977 में मधुबन में आया उस समय बाबा हर एक ग्रुप में 2-2 बार मिलते थे। बहुत छोटा ग्रुप उस समय ओम शांति भवन नहीं था ये हिस्ट्री हॉल था मेडिटेशन हॉल था। कोई 20 का ग्रुप आया कोई 25 का ग्रुप आया कोई 50 100 150 की ग्रुप आ गया तो बहुत बड़ा ग्रुप था उस समय। बाबा उस समय एक एक आत्मा को सामने रख के यहां ही सामने बिठा के जैसे छोटे बच्चे के साथ उनकी डैडी मम्मी बात करते हैं ना उस रीति से बाबा बच्चों को श्रृंगारता था। एक एक बातों का एक एक वरदान का एक एक शक्ति जैसे आत्मा के अंदर बाबा जैसे शक्ति भरते हैं ना उस रीति से वो दृश्य अभी दोबारा हम 5,000 साल के बाद ही देख सकता है। अभी सिर्फ सुन सकते हैं हम लोग है ना। तो उस रीति से बाबा ने हाजिर नाजिर हम आत्माओं के सामने हर सेकेंड हर कदम पर बच्चों को मदद करके इतनी छोटी सी पौधा आप सभी जानते हैं 1936 में शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन को आधार लिया ये घर में ये शुरू हुआ। कितना छोटा पौधा था शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा बच्चे आप केवल निमित्त बनो बाकी सब काम मैं करता हूं। छोटी सी काम है क्या अगर आप हम सभी सोचे कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को एक व्यक्ति को उनके अंदर कोई भी अवगुण ना हो उस रीति से हम उस व्यक्ति को मैं खुद परिवर्तन कराएंगे उसको ऐसे हम एक एक व्यक्ति प्रतिज्ञा करे कर सकता है। चलो वो बात भी छोड़ दो हमारा बच्चा ही है हमारे घर में हमारे बेटा है परिवार में है उनके अंदर भी कोई अवगुण ना हो उनको एकदम देवात्मा जैसा मेरे को बनाना है तो बना सकता है। इतना शक्ति है हमारे में। देखिए हम लोगों के अंदर एक को परिवर्तन नहीं कर सकता है। परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा बच्चे केवल आप निमित्त बनो सारी दुनिया को, एक व्यक्ति नहीं, यहां एक गांव भी नहीं, यहां एक स्टेट भी नहीं, सारी दुनिया को ये घोर कलयुग से परिवर्तन करके क्या बनाएंगे? स्वर्ग बनाएंगे। कितना पावरफुल संकल्प बाबा ने किया। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा एक सेकंड भी नहीं सोचा। आज भी सवेरे मुरली में आप लोग सुना होगा, बाबा इतना भक्त थे गीता पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, महान भक्त था, सब प्रकार के ज्ञान बाबा को था, भक्ति मार्ग में भी। ये सब जानते हुए भी, ये सब मानते हुए भी, जैसे शिव बाबा ने साक्षात्कार करा के बाबा को आदेश दिया, बच्चे आप निमित्त बनो, आपका शरीर मेरे को दे दो, आपका शरीर के माध्यम से मेरे को ये कार्य करना है। जैसे बाबा ने कहा, 100% बाबा ने हाजी किया। अभी हम सभी हम अपने आप से पूछे, अपने आप में ही क्वेश्चन करें, बाबा ने तो हम सभी को ढूंढ लिया, अपने बच्चा भी बना लिया, बाबा के पास जो भी ज्ञान है सब कुछ हमारे सामने रख दिया, बाबा पर्सनली कुछ भी नहीं रखा है। मैं कितने परसेंट बाबा जैसे कहा वैसे मैं चल रहा हूं? ब्रह्मा बाबा ने तो बाबा जैसे कहा वैसे, इसीलिए तो बाबा नंबर वन में आ गया। हर घड़ी हर सेकंड हम लोग हमारे दादियों को भी देखा है, हमारे पुराने जो महारथी भाई लोग थे उनको भी देखा है। हर सेकंड आज बाबा ने मुरली में जो कहा, बच्चों के लिए मैं हाजिर नाजिर हूं, एक एक शब्द एक एक कदम में हम लोगों को देखा है, बाबा को साथ रख के कैसे चला, बाबा को साथ रख के इस छोटी सी पौधा को कैसे आगे बढ़ाया। एक घर में जो शुरू हुआ है वो ये ओम मंडली, यज्ञ की स्त्री तो आप सभी जानते ही है, सुना होगा या पढ़ा होगा, बाबा ने कितना सहन किया होगा उस समय। ये सच्चा ज्ञान को लोगों के सामने रखने के लिए, लोगों को इस ज्ञान मार्ग में लाने के लिए बाबा ने ओम मंडली में कितना सहन किया, फिर भी बाबा के अंदर कभी भी संकल्प में भी नहीं आया। क्यों? ये करने वाला कौन है? बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, भले दुनिया कुछ भी बोले वो क्या जानता है। यहां तक भी बाबा को खत्म कर दो, इनको ये रहे नहीं, अगर ये दुनिया में रहेंगे तो ये हमारा बच्चे हमारा परिवार बिगड़ता है, यहां तक भी लोग सोचा। हिस्ट्री में आप लोग सुना होगा, तो भी कोई भी बाबा का कुछ भी कर नहीं सका। क्यों? बाबा के साथ कौन था? यही बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को स्पष्ट कहा, मैं बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हूं। अब ये भी लेटेस्ट अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम चिंता मत करो। आगे क्या बोला है? हम सभी के पास वो स्लोगन है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं है ना हमारे पास। इसको हम सिर्फ सुन के या पढ़ के छोड़ने का नहीं, ये आत्मा इस शरीर में अंतिम श्वास तक जब तक है तब तक ये हमारा हर सेकंड में हम बुद्धि में अनुभव करना चाहिए, तभी तो उसका आनंद आता है, तभी तो आपको देख के दूसरे को एक प्रेरणा मिलता है। देखो इनके सामने कितनी बड़ी समस्या आया है तो भी इनके चेहरे में इतना खुशी है, इतना नशा है, क्या मिला इनको? ऐसी इतना बड़ी समस्या इनके घर में आया है। समस्या तो देह के कनेक्शन है ना, आत्मा के साथ तो नहीं है ना। हमारे आत्मा को श्रृंगार करने वाला हमारे पिता परमात्मा इस धरती पर आए हैं, हमारे सामने हैं। वो कहते बच्चे ये देह को भी भूलो और देह का संबंध को भी भूलो, जो कुछ आपके पास है सब कुछ भूलो। क्यों? कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है ना, आते हैं क्या? अभी हमारे पास जो कुछ भी है वो कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है, और हम जब इस धरती पर आए कुछ भी हम लोग साथ में लेके नहीं आए। काली आत आया है और काली आत ही जाना है। अगर जैसे जैसे हम लोग इस बात का अपने जीवन में अनुभव करते जाएंगे, अगर एक शब्द भी मेरे मुख से निकले, एक काम में कुछ करने जाएंगे, हमारे सामने हमारे बाबा हाजिर नाजिर है, मेरे से वो कोई भी कर्म विकर्म हो सकता है? हो सकता है? बच्चों के लिए भी अगर गलत शब्द भी आप यूज करने चाहे तो यूज कर सकता है। क्यों? हमारे सामने कौन है? इस रीति से हम लोग जितना कूट के बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल आपको सुनाना चाहता हूं, जैसे ज्ञान सरोवर का जो जमीन लिया 1991 में, तो दादी जी ने कहा वो तो एकदम जंगल के बीच में, आप लोग सभी देखा है पूरा जंगल ही था वो। उस समय सबसे पहले हम लोग सोचा वहां कुछ पेड़ पौधा लगा दे, मकान तो बाद में बनाएंगे, जंगल सारा निकालेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे। दादी से छुट्टी लिया हम लोग, ठीक है शुरू करो। तो पूरा जंगल शुरू किया हम लोग झाड़ी गीड़ी निकालने के लिए। रात को वहां रहने वाले भी कोई नहीं है, 3-4 पत्थरा डाल के एक शेड बनाया। रात को जाके मैं और हमारे साथ एक भाई दो भाई सोते थे वहां पूरा जंगल के बीच में। अभी हम लोग अभी यहां से एक जंगल के अंदर एक आदमी जावे, कोई आसपास में कोई भी नहीं है तो डर तो नहीं लगेगा? इतनी बड़ी जंगल के बीच में हम दो जने हैं, परंतु उस समय भी हमारे अंदर ये निश्चय था 100% हमारे साथ कौन है और ये कार्य किसका है। इसके लिए भगवान ने मेरे को सेलेक्ट किया है, इस महान यज्ञ का, इस महान कार्य के लिए परमात्मा ने मेरे को सेलेक्ट किया है, मेरा कितना सौभाग्य है। देखिए उस दिन शुरू किया, उसके बाद में चलते गए, जो हरेक जगह पर जय जय बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों तुम बच्चों के लिए हाजिर नाजिर हूं, हर जगह पर हम लोग जहां जाके खड़े हो जाते थे कुछ करने के लिए, बाबा आप बताओ इसको कैसे करना है। वो तो जंगल था, जहां देखो पत्थर, जहां देखो पेड़ पौधे, वहां बनाएंगे कैसे हम लोग? कुछ मकान बना दिया, वो लोग बोलते थे भाई इधर जो कुछ जगह बचा है इसको बगीचा बनाओ। तो हम तो उस समय जाके बाबा को याद करके खड़े हो जाते थे, बाबा आप बताओ। जैसे जैसे उस समय बुद्धि में विचार आया, संकल्प आया, करते गए करते गए करते गए, आज लोग पूछते इसका प्लानिंग कौन किया है, लैंडस्केप कौन किया। हमको पूछते अभी भी आकर के, भाई हमारा लैंडस्केप मास्टर तो ऊपर बैठा है, हाँ वो जैसे स्केच करेगा, हम लोग आज तक भी इतनी इन 40 सालों में बाबा ने आज जो नाजिर नाजिर कहा ना, उसको हमारे जीवन में बहुत 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 कुछ अनुभव किया है। शुरू शुरू में जब हम लोग आते थे यहां, बाबा से हर बात पूछते थे हम लोग। एक बार मैं गवर्नमेंट सर्विस करते थे कर्नाटका गवर्नमेंट में, यही हॉर्टिकल्चर गार्डन डिपार्टमेंट में, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरे को वापस नहीं जाना मधुबन में, 82 की बात है। मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे, मेडिटेशन हॉल में बाबा आया, बाबा के सामने मैं ट्रॉली लेने गए, मेरे को अभी वापस नहीं जाना, मेरे को मधुबन में रहना है, मेरे संकल्प। परंतु परमात्मा का संकल्प अलग है ना। जब मैं ट्रॉली लेने सामने गए, हमारे दीदी बाबा के बाजू में बैठी थी, दीदी ने कहा बाबा ये नौकरी छोड़ के आ गया है। अच्छा, बाबा जैसे हाथ में ट्रॉली लिया, वापस ट्रॉली रख दिया बाबा ने, ट्रॉली रख के बाबा दृष्टि देने लगे। मैं सोचा मैं अंदर संकल्प कर रहा हूं, बाबा ने कोई बात नहीं यहां ही रह जाओ, बोल जा बोलेंगे अभी, ऐसे मैं संकल्प कर रहा हूं। बाबा ने दृष्टि देते देते कहा, अच्छा, हमारे दीदी ने कहा बाबा वहां हमारा सेंटर नहीं है, हमारा बीके परिवार नहीं है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा, वहां नौकरी छोड़ के आ गया, दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था। तो बाबा ने कहा आप ही सेंटर खोलो ना। कंप्लीट चेंज हो गया, मेरी बुद्धि में मैं सोच रहा था, उसका कंप्लीट बाबा 100% चेंज कर दिया। जैसे बाबा का मुख से वो शब्द निकला, मैंने सोचा बाबा कहा मेरे को वापस जाना सही है, अभी कुछ भी हो जाए अभी जाना, वहां सर्विस करना है। फिर हमारा दीदी ने कहा बाबा वहां गांव भी छोटा है, लोग भी कम हैं, ऐसे बहन जी ने कहा। उस समय हरेक सेवा केंद्र का दीदी बाबा के बाजू में बैठते थे, तो हरेक स्टूडेंट से पहचान कराते थे अपने अपने सेंटर का। बाबा ने कहा कम से कम 4-5 तो निकलेगा ना, ये परमात्मा का मुख से निकला हुआ ये महावाक्य, कम से कम 4-5 तो निकलेगा ना। तो अभी और भी 10-15 दिन छुट्टी जो लिया था वो बाकी था, मैं सोचा अभी ये 15 दिन वापस चले जाना चाहिए मेरे को, कर ली जैसे बाबा कहा वैसे करेंगे। ऐसे करके मैं बाबा के सामने खड़े हैं तो दीदी चुप हो गई। फिर बाबा दृष्टि देते देते मेरे को कहा फिर भी कोशिश करो बदली करने के लिए, ट्रांसफर के लिए। तो मतलब ये बात मैंने आपको क्यों कहा, इस रीति से उस समय हम बच्चे बाबा के सामने हमारे मन का जो भी बात है बाबा के सामने रखते, बाबा हमारे लिए कहीं दूर की बात नहीं है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा हम तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर हूं, 100% हमारे सामने। उस समय हमारा दादियों का कोई भी मीटिंग हुआ, कुछ डिस्कशन करना है, दादियों के कमरे में बाबा आ जाता तुरंत। देखिए इस रीति से बाबा ने शक्ति देते आत्माओं को पक्का बनाते बनाते इस यज्ञ को बाबा ने यहां तक ले गया। आज भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लिए मैं हाजिर, बाबा अभी अव्यक्त रूप में नहीं आया ऐसे नहीं है। बाबा हमको छोड़ के जाएगा कहा? बाबा परंधाम में क्या करेंगे बच्चों को छोड़ के? साथ साथ में इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने रचा है। बाबा ने कहा अंतिम समय तक मैं आप सभी के साथ हूं, सभी साथ में ही जाना है। जब ड्रामा पूरा हो जाता है सब साथ में ही जाना है, तब तक भी मैं आप लोगों के साथ हूं। ये बाबा का महावाक्य। इसीलिए हम सभी आत्माएं, हम कहां भी रहे कैसे भी रहे, मैं छोटे हूं बड़ा हूं अपना सा बहुत बंधन में हूं नहीं, कुछ भी परिस्थिति आ जावे हमारे जीवन में, जब तक मैं ये अनुभव करेंगे हमारे बुद्धि के अंदर ये पक्का हो, माया हम किसी आत्माओं को हिला नहीं सकता है। इसके पहले हमको क्या करना चाहिए? हमारा बुद्धि को काली पेपर बना के रखना चाहिए। बाबा कई मुरली में हमको कहता ना, बच्चे आप जो कुछ पढ़ा है जो कुछ सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ। अगर समझ लीजिए जो लिखा हुआ पेपर के ऊपर आप दूसरा मुरली आप लिखेंगे, पूरा लिखा हुआ एक पेपर है उसके ऊपर आज की मुरली आपने लिखा, पढ़ सकता है? पढ़ सकता है ना? आप पढ़ सकता है ना दूसरे को सुना सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आप जो कुछ पढ़ा है जो कुछ सुना है भूल जाओ, काली पेपर, बुद्धि काली रहे। जब हमारे बुद्धि काली रहेगा परमात्मा का एक एक शब्द वहां प्रिंट हो जाए। जैसे काली पेपर में हम आराम से जो लिख सकते हैं आराम से पढ़ सकता है उसको हम सहज रीति से जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर हमारा बुद्धि के अंदर पुरानी बात होगा तो क्या होगा? सबसे पहले अभिमान आ जाएगा, मैं ये हूं मैं ये हूं, मैं ये पढ़ा है, मेरा अधिकार ऐसा है, मैं इतना बड़ा घर का हूं। हमारे पास एक कुमारों का एक छोटी सी बात, हम जब सेवा में थे वहां सेंटर पे, हम सब कुमार थे, कोई सेंटर में सेवा था, एक कुमारा, हम सभी कोई बजरी उठा रहा है कोई कपची उठा रहा है कोई कंक्रीट उठा रहा है सब कुछ कर रहा है। तो हमारे साथ वाला ही एक कुमारा है, तो हमारा सीनियर भाई से कहा भाई साहब मैं भी सेवा में आया है, ठीक है आ जाओ हमारे साथ। उन्होंने क्या कहा, कोई ऑफिशियल सेवा हो तो बताइए। अभी बाबा के घर में ऑफिशियल सेवा कौन सा है, ऑर्डिनरी सेवा कौन सा है, अभी आप सोच लीजिए। अभी रोटी बनाने की सेवा ऑर्डिनरी है या झाड़ू पोछा लगाने की सेवा ऑर्डिनरी है या भाषण करने की सेवा ऑफिशियल है या क्लास कराने की सेवा ऑफिशियल है, क्या ऑफिशियल है? ऐसे विचार आ जाएगा। अगर हमारे बुद्धि के अंदर कुछ विचार होगा, हमारा बुद्धि का पेपर काली नहीं है, तो ये संकल्प आएगा। गुलजार दादी जी ने एक बार क्लास कराने के समय हम मधुबन वालों के साथ एक बात सुनाई थी। अभी समझ लो बहुत बड़ा फंक्शन है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जैसा बड़े बड़े लोग आए हैं, फंक्शन चल रहा है, उनके साथ में कुछ मधुबन वाले बड़े बड़े महारथी भी बैठ के भाषण कर रहा है, फंक्शन भी चल रहा है, भाषण करने वाले भाषण भी कर रहा है। अगर वो डाइनिंग हॉल में आए भोजन करने के लिए, डाइनिंग टेबल क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, उसी टेबल में बैठ के उनको भोजन करना है, जो मिनिस्टर आए हैं उनको उसी टेबल पे बैठ के भोजन करना है, वो टेबल के ऊपर पोछा मारना वो नहीं किया है, साफ ही नहीं किया है। तो अभी ये स्टेज में जो भाषण किया वो भाषण का प्रभाव अगर वो टेबल में भोजन पे गया वहां अगर एक्यूरेट नहीं है तो क्या हुआ इसीलिए दादी जी ने कहा बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा कम नहीं है, कोई भी सेवा सब बराबर है, भले झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ। अभी तो मधुबन में इतनी सारी यज्ञ में बहुत सुविधा हो गया है, शुरू शुरू में हम लोग जब आए उस समय सब काम हम लोग ही करते थे, झाड़ू लगाना पोछा मारना हर काम उस समय, क्योंकि आप लोग जानते होगा मधुबन में बेगरी पार्ट जब शुरू हुआ था जानते हैं आप लोग बेगरी पार्ट में बेगरी पार्ट में यहां तक आ गया था एक टाइम का भोजन का भी मुश्किल हो गया था यज्ञ में। बाबा ने इतना बड़ा पेपर दिया था बच्चों को, देखे इस पेपर में कौन पास होगा, जैसे हैदराबाद सिंध कराची से 400 लोग हमारे बड़े बड़े दादिया जो आए थे वहां से, जैसे यहां आने के बाद में बग्गरी पार्ट आ गया, बाबा को टेस्ट करना था कितना बाबा के बच्चे इसमें पक्के हैं। उसमें आधा से आधा निकल गया, आधा से भी ज्यादा, 14-15 साल तपस्या करके। कुछ लोग ये बहाना, बाबा हम अलौकिक घर में जाएंगे वहां से कुछ मदोगरी करके आएंगे उनके तरफ से यज्ञ की सेवा कराएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ कारण बता के आधा से भी ज्यादा। परंतु जो आत्मा हमारे सामने हाजिर नाजिर हमारे बाबा है, हमको किस बात का चिंता है, वो खिलाएगा हम खाएंगे, नहीं खिलाएगा बाबा के साथ रहेंगे। ये जो निश्चय 100% जिन आत्माओं में था वो बाबा के साथ बच गए, तब बाबा को गारंटी हुआ यही मेरी बच्चे सारी दुनिया को बाबा का संदेश देने वाले। तब तक ये यज्ञ की सेवा हो बाबा का ज्ञान वो कहीं भी प्रचार नहीं था दुनिया में कहीं भी। ये 1956 की पहले की बात है, 56 के पहले बात। जब बाबा ने एक एक हमारे महारथी दादियों को एक एक को बुलाया, एक एक को बुला के बाबा ने कहा आप इस जगह पर जाओ, आप इस जगह पर जाओ, ना भाषा जानता है ना जगह जानता है, वो जगह कौन सा है अभी आप लोग वो सारा हिस्ट्री में बहुत सारी है, तो एक एग्जांपल में बताओ, मनोहर दादी को आप में से किसी ने देखा है, गंगे दादी को? बाबा ने मनोहर दादी गंगे दादी दोनों को बुलाया, आप लोग बाबा की सेवा के लिए जाओ, कहां? यूपी में। जी बाबा, आगे कुछ पता नहीं, ऐसे हमारा हृदय पुष्पा दादी को बुला के कहा बेटी आप मैसूर कर्नाटक में चले जाओ। कदारी सोचती है ये कौन सा कर्नाटक है, क्या है वहां? राजा महाराजा ने ये दशहरा है ना बहुत धूमधाम से मनाता है, उनको बाबा सौगात देगा, आप उनको सौगात दो वहां सेवा शुरू करो। जी बाबा, कुछ पता नहीं, 100 में 100% कर्नाटक कहाँ है, कौन सी भाषा है, वहां जाके क्या करूं, किससे मिलूं, कुछ पता नहीं। जी बाबा, परंतु हमारा दादियों में निश्चय क्या था, हमको बोलने वाले कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा ने मेरे को कह रहा है, तो उनको मैं क्वेश्चन क्यों करूं, बाबा हम कैसे जाऊं, वहां नहीं जानता हूं। अगर बाबा बोल रहा है उसके साथ साथ पूरा शक्ति भी मेरे को दे रहा है ना, इतना निश्चय। जैसे बाबा आज कहा ना हाजिर नाजिर बच्चों के लिए, इस रीति से बाबा हमारे साथ है, मैं कहां भी कदम रखेंगे बाबा हमारे साथ है। देखिए रुद्रीय पुष्प दादी को बाबा ने बुलाया, उस समय कोई ट्रेन का रिजर्वेशन कुछ नहीं था, ये अनरिजर्व टिकट नहीं मिलते आजकल, जनरल डब्बी ऐसे टिकट लेके दे दिया यहां से बेंगलुरु का। चार चार दिन का रास्ता था उस समय, कम से कम पांच छह जगह पर ट्रेन बदली करना था। दादी को हिंदी और सिंधी, इसके सिवाय और कुछ पता नहीं। ट्रेन का टिकट दिया, उसके बाद में पांच रुपए पैसा हाथ में दिया, क्योंकि पूरा बिगरी पार्ट था उस समय। जाओ बच्ची सेवा करो, अगर हमको कोई ऐसे बोलेगा तो। अगर आप सभी घर से आए हैं टिकट लेके पांच रुपए हाथ में पकड़ा के, हम आपके माँ बाप ने, जाओ भाई तुम मधुबन में सेवा करके आओ, हम निकलेंगे घर से हाँ, वहीं झगड़ा करके बैठ जाएंगे हम लोग, है ना। परंतु दादी ने जी बाबा, पांच रुपए लिया टिकट लिया जी बाबा। उस समय यज्ञ में कोई भी गाड़ी कोई भी व्यवस्था नहीं था, यहां से रेलवे स्टेशन गई, ट्रेन में बैठ गई, कैसे भी करके पूछताछ करके 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 बेंगलुर पहुंच गई। बेंगलुर में रेलवे स्टेशन से उतरे, उतरने के बाद में उनकी लगेज था ना, उस समय तो ये ट्रंक वगैरह होता था, अभी जैसा सूटकेस वगैरह नहीं था, वो सारा लगेज बाहर निकाल के एक कूली लेके आया रेलवे स्टेशन से बाहर। जो वो कूली लेके आया, दादी के पास पैसा कितना था, पांच रुपए, वो पांच रुपए निकाल के वो कूली के हाथ में दे दिया दादी। कंप्लीट कालियात। अभी आप सोच, मैं ये बात आपको क्यों सुनाया, अभी हम सभी सोचने की बात है, ये परमात्मा के ऊपर कितना निश्चय, कितने परसेंट। बाबा आप कुछ भी करो, कहां भी रखो, कैसे भी करो, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ है। दादी ऐसे बाहर रेलवे स्टेशन से बाहर खड़े हो गई, वहां से शुरू हुआ उनकी यात्रा। उसके बाद में कोई आए, दादी से बात किया, अपने घर में लेके गया, ऐसे बाबा की सेवा वहां शुरू हुआ। इधर गंगे दादी और मनोहर दादी का सेवा कैसे शुरू हुआ, ये लोग गए यहां से, अभी जाएंगे कहां रहेंगे, कहा एक पुराना मंदिर में गए। मंदिर में क्या, कोई दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा टूटा फूटा दरवाजा है, सब ओपन है। एक दादी अंदर बैठती थी, एक दादी बाहर खड़े हो जाती थी, तो रास्ते में खड़े होके उनको बुलाने का, जो जाने वालों को हमारे परमात्मा का संदेश सुनाएंगे आओ। तो उस समय सब छोटे छोटे थे ना, इतना बड़े, देखिए इतना छोटा उम्र में भी वहां कोई ना सिक्योरिटी है, कुछ नहीं है, मंदिर का दरवाजा खुला है। तो रात को सोने के समय एक को पहरा देने का, एक सोने का, कितना करेज। ऐसे शुरू हुआ यज्ञ की सेवा, एक एक स्टेट में, एक एक जगह पर। आज ऐसे सुनाते जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। दादियों का एक एक दादी के साथ बैठ के सुनेंगे तो हमारा जिंदगी पूरा निकल जाएगा सुनते सुनते। ऐसे बाबा ने दादियों को श्रृंगारा है, शादियों को तैयार किया है, दादियों की आत्माओं में इतना शक्ति भरा है। आज भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए मैं हाजिर नाजिर हूं, मैं तुमको छोड़ के गया नहीं है, परंतु आप वो अनुभव करना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। आप जितना वो अनुभव करेंगे वो आनंद आपको मिलेगा। अगर आप वो अनुभव ही नहीं किया तो एक कहानी है, विक्रमादित्य महाराजा का आस्थान में एक ब्राह्मण गया भीख मांगने के लिए। वो सोचा मैं महाराजा के पास जाता हूं, राजा कुछ अच्छा भिक्षा देंगे, मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। राजा ने ऐसे ही दिया उसको, एक सोने का ये पेटा होता है ना बड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको, पेटा, सोने का पेटा दे दिया। तो उसको बाहर ले आके वो ब्राह्मण ने सोचा, अरे मेरी तकदीर क्या है, महाराजा के पास आया तो भी मेरे को एक पेटा ही दिया है, साधारण मनुष्य के पास में गया तो भी मेरे को पेटा देता है, ये भी तो एक पेटा ही दिया। ऐसे करके बाहर लेके आते आते जैसे आप जैसे सामने आया, क्या ब्राह्मण जी ये पेटा आप देने वाले हैं क्या? हाँ ले लो, 4-5 रुपए में बेच दिया। राजा ने इनकी जिंदगी पूरा सुधारने के लिए सोने की पेटा दे दिया उनका पूरा जिंदगी, परंतु उनके भाग्य में नहीं है तो कैसे मिलेगा? ऐसा भाग्य भी हमारा होने चाहिए ना। परमात्मा हमारे हाजिर नाजिर है, हमारे सामने है, हमारे साथ है, हर घड़ी हर सेकंड। वो अनुभव हम सब आत्मा अंतिम श्वास तक करें, क्योंकि अभी और भी नाजुक समय आने वाला है। बाबा कहते बच्चे दुख का पहाड़ गिरने वाले हैं। ऐसे समय पर भी अगर हम लोग जितना जितना हमारे पिता परमात्मा को हमारा साथ रखेंगे, वो अनुभव करेंगे, उन आत्मा को माया का कोई भी शक्ति कोई भी प्रभाव हिला नहीं सकता। ऐसे अनुभव करेंगे ना हम लोग सभी। उसी स्थिति में अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।